प्रेमपुरी जी आश्रम में दैनिक सत्संग प्रवाह के अंतर्गत प्रातःकालीन वेला में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार चिंतन मंच के द्वारा हो रहा है। बहुत ही सुंदर श्रुति के विचार हम लोग देख रहे थे। मनुष्य को दो भाग में विभक्त करके यहां पर देखा गया है, एक उच्च कोटि का साधक और एक सामान्य प्रारंभिक साधक। जो विचारशील पुरुष हैं, मुमुक्षु पुरुष हैं, उसको जिस निष्ठा को प्राप्त करना चाहिए प्रथम मंत्र में बताया, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए। और वैसे सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि न हो पाने पर किन साधनों का अभ्यास अपने जीवन में उस साधक को करना चाहिए जिससे कि वो ज्ञान निष्ठा उसको प्राप्त हो जाए, उसकी योग्यता उपलब्ध हो जाए, जिसके लिए द्वितीय मंत्र चल रहा था, एक साधारण साधक के लिए अत्यंत उपयोगी मंत्र है। एक बार आइए पुनः इसका उच्चारण कर लें, फिर इसके अर्थ गांभीर्य को देखेंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जे जे विषे क्षतम समा जे जे विषे क्षतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजि विशेत शतम समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वहां प्रथम मंत्र में उच्च कोटि के साधक के लिए बोला गया था ईशावास्यमिदं सर्वम्, और इस मंत्र में उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जिसका इस शरीर के साथ में बड़ा दृढ़ आत्मभाव बना हुआ है। और शरीर का अर्थ केवल स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म कारण सहित स्थूल शरीर तीनों ही शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों के प्रति जिसको अहम भावना बनी हुई है। स्थूल शरीर में ये दृढ़ आस्था बैठी हुई है कि ये मैं ही हूं। जिस स्थूल शरीर का जन्म के समय माता पिता ने एक नाम निर्धारित कर दिया और बार 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 उसी नाम से पुकारे जाने के कारण एक दृढ़ आस्था विश्वास इस शरीर के प्रति बैठ जाता है कि चतुर्भाई मैं ही हूं। इस शरीर को लेकर के ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता बैठ जाती है। हर व्यक्ति की बात है, एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। जबकि शरीर कभी मैं नहीं हो सकता, परंतु इसको मैं करके दृढ़ा दिया गया है। सूक्ष्म शरीर मन है, बुद्धि है, इंद्रियां, इस सब में मैं पना आ गया। मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं, मैं देख नहीं पाता हूं, अच्छी तरह से सुन रहा हूं, ठीक से मैं सुन नहीं पाया। देखना, सुनना इत्यादि जो क्रियाएं हैं ज्ञान संबंधी, अथवा जो बाह्य क्रियाएं हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाली, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं करता हूं, ये कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में जो मैंपना आ गया है, इंद्रियों के देखने को, जानने को अपना देखना जानना, इंद्रियों के करने को अपना करना, उसमें मैंपना जिसको हो गया है, वो व्यक्ति जो अपने को कहता है कि मैं अज्ञानी हूं महाराज, इसीलिए प्रतिदिन सत्संग में आ रहा हूं थोड़ा ज्ञान मिल जाए, जो अज्ञान वृत्ति है उस अज्ञान को भी मैं मान लिया कि मैं अज्ञानी हूं, उसके साथ में भी दृढ़ता से मैं भाव बैठ गया, उस व्यक्ति को यहां पर नर शब्द से बोल रहे हैं, जिसने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही शरीरों के साथ में मैं पनाह कर लिया है, और उस व्यक्ति को कहा जाए कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध, ये बात उसके भीतर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी यहीं पर उलझा हुआ है। इस शरीर से आगे बढ़े, ऊपर उठे, तो वो दृढ़ निष्ठा उसको बने। तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिस अनित्य शरीर के प्रति, अनात्म इस शरीर के प्रति, दृश्य भूत इस शरीर के प्रति जो मैंपना है, वो कैसे हटेगा? तब कहा कि यहीं रहते रहते, इस शरीर में रहते ही जब तुम्हारी आंख खुलेगी, थोड़ा विचार कर पाओगे, तब जाकर के इस शरीर से मैंपना हटेगा और ब्रह्मनिष्ठा बनेगी। इसके लिए पहले चित्त की, अंतकरण की, मन की निर्मलता होना बहुत जरूरी है। चित्त शुद्धि के जो साधनभूत कर्म है, उस नरत्व अभिमानी पुरुष के लिए यहां पर उनका वर्णन किया जा रहा है। बहुत सुंदर मंत्र है, कुर्वन एव इह कर्माणि जिजि विषयत शतम समः, यह कर्माणि कुर्वन एव, यह शब्द का अर्थ होता संस्कृत में यहां, कहां? प्रेमपुरी आश्रम में। बोले यहां का अर्थ है कि इस मनुष्य जीवन में जहां तुम्हें करने का अधिकार मिला हुआ है, 84 लाख योनियों में अन्य जितने भी शरीर मिलेंगे, चाहे मनुष्य से भी उच्च कोटि के शरीर मिल जाएं, और भले ही मनुष्य से निम्न श्रेणी के शरीर मिले, चाहे वो देवयोनि में जा रहा हो, चाहे पशुवादि योनि में जा रहा हो, वो सब के सब जितने भी प्राप्त होने वाले शरीर हैं, मात्र भोग के साधन हैं। वहां केवल मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों का फल ही भोगेगा। स्वर्ग आदि में जो सुख विशेष का भोग होता है, अनुकूल संयोग होता है, संकल्प मात्र से ही इच्छित वस्तुओं की उपस्थिति हो जाती है, वो सारी की सारी प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में किए गए कर्मों का ही परिणाम है। और पशुवादि योनि में जितना भी कष्ट, पीड़ा, वेदना, पराधीनता सहनी पड़ती है, वो भी इस मनुष्य शरीर में ही किए हुए कर्मों का फल है। क्योंकि सर्वत्र अन्य शरीर हैं, उनको भोग योनि माना गया है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जहां पर कर्म करने का अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं कि यहां भोगना नहीं पड़ता, इस शरीर को भोगायतन बोलते हैं। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल रूप से सुख और दुख मनुष्य के सामने आते तो हैं, वो भी भोगने पड़ेंगे। पूर्वकृत जो कर्म का फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो उसके सामने आएगा ही आएगा। किसी व्यक्ति ने पूर्व महीने में कहीं नौकरी किया तो उसकी तनख्वाह को वर्तमान महीने में भोगेगा, वर्तमान महीने में कोई पैसा कमा रहा है उसको विशेष करके अगले महीने के लिए, लोग तो अपने अगले महीने के लिए क्या यूं कहो बाबा अगले जीवन तक के लिए इकट्ठा करने की सोचता है, आने वालों के लिए की सोचता है। तो पूर्व में जो किए हुए कर्म हैं 84 लाख योनियों में अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग करके लौट करके मनुष्य जीवन में आ गया, परंतु फिर भी कर्म खजाना इतना भरा हुआ है कि वो 84 लाख योनियों में भोगे जाने पर भी समाप्त नहीं हुआ, वहां अभी शेष बचे हुए हैं। और उन्हीं कर्मों में से प्रारब्ध बनकर के मनुष्य के शरीर में फल देने के लिए जो कर्म उपस्थित हो गए हैं उनका फल तो मनुष्य शरीर में भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध कर्म है उसका फल तो भोगना ही भोगना है, परंतु भगवान की विशेष कृपा है कि उन कर्मों का फल चाहे अनुकूल रूप से आ रहा हो और चाहे प्रतिकूल रूप से आ रहा हो, उनका कर्मों का फल तो भोगना ही है। अब उनको चाहे आप रो करके भोगें और हंसते हंसते भोगें वो तो भोगना ही पड़ेगा, परंतु विशेष ईश्वर की कृपा ये है कि आगे के लिए सावधान होने का यहां पर अवसर है या नए कर्म करने का एक चांस है। इसलिए हमारे संत समाज में एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए, नाम से आप सब जानते हैं, शरीर से मैंने भले ही दर्शन न किए लेकिन उनकी वाणी आज भी गूंजती है, प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ के संस्थापक हुए शरणानंद जी महाराज प्रज्ञाचक्षु महापुरुष थे। देखो बाहर से बाह्य स्थूल नेत्र उनके बिल्कुल बंद थे, कहीं उनका फोटो देखा हो आप लोगों ने, लेकिन भीतर की दृष्टि ऐसी खुली हुई थी बाबा। गिरीश भाई कोई प्रश्न कर लिया तो प्रश्न करके अपनी कुर्सी नहीं पकड़ेगा, उसके पहले उनको उत्तर मिल जाएगा, इतने हाजिर जवाब होते थे, हाजिर जवाब, तत्काल उत्तर तैयार रहता था। वो महापुरुष एक बहुत सुंदर वाक्य बोला करते थे मनुष्य के लिए, क्योंकि करने का अधिकार मनुष्य को ही होता है। वो कहते थे कि होने में प्रसन्न रहो परंतु करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो किंतु करने में सावधान रहो। आज हमारे सामने जीवन में जो भी हो रहा है, अनुकूल रूप से हो रहा हो और चाहे प्रतिकूल रूप से हो रहा हो, उसको तो प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ही द्वारा किए गए उस कर्म का परिणाम सामने आ रहा है। जो बीज हमने बोया था आज वो फल देने के लिए तैयार है, तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें आप प्रसन्न होकर के भोग लो, चाहे अप्रसन्नता से स्वीकार करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है कि हंसते हंसते स्वीकार कर लो, होने में प्रसन्न रहो। किंतु आज जो हमारे साथ में हो रहा है, जरूरी नहीं कि मिठाई मीठा खाने को मिले, बहुत मीठा खाने को मिले तो आखिर में उसको कड़वा भी खाना ही पड़ता है, करेले भी खाने ही पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रतिकूल भी आएगा ही आएगा, क्योंकि कर्म सारे के सारे शुभ ही वो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जो निषिद्ध कर्म है, अशास्त्रीय है, शास्त्र के आदेश के अनुसार नहीं अपितु हम लोग वासना के वशीभूत होकर के उस कर्म को कर बैठते हैं जो अशास्त्रीय होता है, और उसका परिणाम तो दुख रूप से सामने आएगा ही आएगा। परंतु चूंकि हमारा ही किया हुआ है और भोगना ही है तो हंस करके भोग लो ना। मगर जो आने वाला समय है वैसा फल हमारे सामने दोबारा पुनः ना आवे, तब वहां कहते हैं कि करने में सावधान रहो। अभी जो कर रहे हो बड़ी सावधानी से करो, किस सावधानी से करना चाहिए वही तो भगवती श्रुति यहां पर बोल रही है कि करने में इतने सावधान रहो कि फिर वो दुख रूपी फल हमारे सामने ना आवे, उसके लिए बहुत सुंदर मंत्र हो रहा आया है, इसलिए यह शब्द का प्रयोग किया है। ये करने का अधिकार है तो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही है, इसलिए यह माने मनुष्य शरीरे कर्माणि कुर्वन् यव शतम समः जिति विशेष, कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कल विचार उठाया था, इतने में घड़ी ने इनकार कर दिया। कर्माणि कुर्वन् यव, यहां कर्म में बहुवचन का प्रयोग किया है। कर्माणि शब्द संस्कृत में बहुवचन है, यहां कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो कौन से कर्म करें? यद्यपि कर्म अगर वासना की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत प्रकार के कर्म होते हैं, साधनों की दृष्टि से देखते हैं तो भी कर्म से कम 3 प्रकार से कर्म होंगे, कहीं शारीरिक होंगे, कहीं मानसिक होंगे, तो कहीं अविद्या अज्ञान जनित काम हो ही रहे हैं सबके सब, उसमें निमित्त बन जाते हैं, कहीं वाचिक कर्म हो जाएंगे। परंतु कौन से कर्म को करने के लिए श्रुति कहती है कि कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कर्म का मुख्य करके जो यहां उपयोग है वो है 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते हैं विहित कर्म और दूसरे होते हैं प्रतिषिद्ध, जिसको निषिद्ध कर्म बोलते हैं। श्रुति भगवती कहती है कि उन कर्मों को करो जो विहित कर्म है, शास्त्र प्रतिपादित कर्म है, जिसके लिए भगवती श्रुति मां कहती है कि ऐसा करो। श्रुति ने कहा है अर्ह अग्निहोत्रम जुहियात, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यह श्रुति का आदेश है। इसलिए आचार्य शंकर भाष्य में यहां लिखते हैं कि कुर्वन् एव कर्माणि अग्निहोत्रादीनि, कौन से कर्मों को करो? कहते हैं अग्निहोत्र आदि जिसमें प्रधान रूप से होते हैं। अग्निहोत्र आदि शब्द को देकर के भगवान शंकराचार्य महाराज इस बात को कहना चाहते हैं कि कर्म तो अपनी वासना से भी होता है। वैसे हमारे शास्त्रकारों ने कर्मों के 5 भेद किए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निष्काम कर्म और प्रायश्चित कर्म। 5 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। आचार्य शंकर उसी का यहां पर संकेत दे रहे हैं कि ये जो कर्म है उनको करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निष्काम और प्रायश्चित कर्म, ये 5ों कर्मों के लिए शास्त्र का विधान है। शास्त्र ने कहा कि ये 5ों कर्म करिए। गीता के निष्काम कर्म वालों को आश्चर्य हो रहा होगा कि सकाम कर्म की भी बात शास्त्र बोलता है। बिल्कुल निश्चित रूप से शास्त्र कहता है कि आप सकाम कर्म भी करिए, क्योंकि अभी सकाम के लायक हैं। सकाम कर्म भी उनके लिए कहा गया है जो व्यक्ति वास्तविक कर्म करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग करके कर्म करते हैं। उनको कहा कि भाई तुम्हारी मन की वासना ही तो पूरी करनी है, अब तुम्हें धन ही तो प्राप्त करना है, तुम्हें मान प्रतिष्ठा ही तो प्राप्त करनी है, तुम्हें अपने आवश्यक सुविधाएं ही तो जुटानी है, तो वासना के गुलाम होकर के उनको प्राप्त मत करो। पर किस प्रकार से धन प्राप्त करना है, किस प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, अरे शास्त्र जो विधि बता रहा उससे करो, ताकि तुम्हें कोई प्रत्यवाय न लगे, कोई पाप न लगे। इसलिए उन लोगों के लिए सकाम कर्म भी शास्त्र विहित हैं जो शास्त्र विधि को त्याग करके और मनमाने ढंग से कर्म करने वाले हैं। कम से कम उनको शास्त्र का पता तो चले कि शास्त्र हमसे क्या करवाना चाह रहा है। इस प्रकार से 5ों ही 5ों प्रकार के जो कर्म हैं वो शास्त्र विहित है। नित्य कर्म जिसको लेकर के आचार्य शंकर लिखते हैं अग्निहोत्रादीनि कर्माणि, ये अग्निहोत्रादि जो कर्म है वो नित्य कर्म माने जाते हैं। आप लोगों को पता होगा नित्य स्वाध्याय वाले हैं, प्रवचन वाले हैं, 365 दिन आप चिंतन करते हैं। हर गृहस्थ के घर में मनुस्मृति ने कहा है कि 5 प्रकार के पाप नियमित रूप से होते ही होते हैं। पंच सोना गृहस्थस्य पंच यज्ञात प्रणश्यति कुंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभश्च मार्जनी। 5 प्रकार के पाप गृहस्थ के घर में होंगे ही होंगे। किसी भी प्रकार से उन पापों से बच पाना उनके लिए संभव नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या के साथ में जुड़े हुई ऐसी चेष्टाएं ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों को करने पर ये 5 प्रकार के पाप होते हैं। अब उन 5 प्रकार के पापों का जब तक प्रायश्चित न हो, प्रायश्चित शब्द आप समझते हैं ना, प्राय शब्द का अर्थ होता है पाप और चित्त का अर्थ होता है शोधन सफाई। उन 5 प्रकार के जो पाप कर्म हो रहे हैं उनकी सफाई करनी पड़ेगी। जैसे घर में कचरा आ जाता है तो झाड़ू लगा करके सफाई की जाती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे इस शरीर रूपी गृह में ये 5 प्रकार के पाप जब प्रविष्ट होते हैं तो हर दिन उसका झाड़ू लगना चाहिए। कोई लोग कहें कि भाई हम पाप करेंगे ही नहीं, तो फिर उसके प्रायश्चित की कहां जरूरत है। प्राय हो तो चित्त की आवश्यकता पड़ेगी, पाप हो तो शोधन की आवश्यकता पड़ेगी। कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है। आप कल अपने घर में सफाई करवा दी हुई होती है, लेकिन एक दिन संडे को नौकर छुट्टी मना जाए तो देखते हैं कि घर में कचरा इकट्ठा होने लगता है, बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसलिए हर दिन घर में सफाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिदिन मनुष्य को अपने शरीर में भीतर भी सफाई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहला कर्म बताया है कि अग्निहोत्रादिनी कर्माणि से कहते हैं नियत कर्म। नियत कर्म का अर्थ होता है संध्या वंदन आदि जो नियमित रूप से इंसान को करना चाहिए। 5 प्रकार के जो पाप हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञस्तु तर्पणम देवी होमो बलि वैश्वो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। 5 प्रकार के साधन बताए हैं शोधन करने के लिए। जब 5 प्रकार से पाप घर में नियमित रूप से हो रहा है, देखो ये शरीर है, इसको अन्न तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, और भोजन के लिए जो अन्न चाहिए उस अन्न की सफाई तो होनी ही चाहिए, उसमें अनावश्यक तत्व उसको हटाना चाहिए। अन्न ऐसे नहीं बन जाता है, खाने लायक बनाने के लिए पहले उस अन्न को कूटना पड़ता है, उसके छिलके उतारने पड़ते हैं, और जब घास के साथ में वो अन्न तैयार होता उसमें कितने जीवाणु होते हैं शायद मुंबई वालों को उसकी कल्पना नहीं होगी। अन्न में इतने जीव होते हैं, हम लोग देखते हैं बाबा वो गायों के लिए ट्राली भर करके खेत जो घास आती है, जब उस घास को मशीन पे काटते हैं तो मच्छरों की तरह वहां पर कीड़े उड़ते हैं, और जब मशीन चलती है तो वो सारे कीड़े उसी के साथ मरेंगे भी सही। थ्रेसर मशीन चलती है सफाई करने के लिए, कितने सारे कीड़े होते हैं। उस अन्न को तैयार करने के लिए फसल को कीट पैदा होकर के नष्ट करने लगते हैं। एक किसान बहुत बड़ा स्प्रे करके विष फेंक करके उन जीवों को नष्ट करता है, वो किसके लिए कर रहा है, अन्न हमारे लिए तैयार कर रहा है। तो हमारा पेट भरने के लिए जो एक अन्न तैयार किया जा रहा है उसमें न मालूम लाखों जीवों का पेट काटा जाता है, तब कहीं जाकर के वो अन्न हमारे खाने काबिल बनता है। वो रोज पाप तो हो ही रहा है, अन्न की सफाई करो उसमें पाप होगा ही होगा, छिलके उतारने ही पड़ेंगे निश्चित रूप से उसमें पाप होगा। तो अन्न को सफाई करने में कूटने आदि में जो दोष लगता है उसे इंसान बच नहीं सकता, भोजन तो करना पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, वो प्रतिदिन पाप लग रहा है। अन्न को फिर खाने के लिए पेशनी, उसको बेसन बनाना है, उसका आटा बनाना है, उसको खाने के लायक तैयार करना है, और फिर उसको पकाना है। कच्चा खाना संभव नहीं है तो पका करके खाना ही पड़ेगा। तो अन्न को तैयार करने में, अन्न को पीसने में, अन्न को पकाने में जो पाप लग रहे हैं, उस पाप से भला कैसे बच पाएंगे? और बिना जल के अन्न को खाने काबिल भी कैसे बनाओगे? जल के बिना उसका पाचन भी नहीं हो सकता। जल तो इंसान का जीवन है, और उस जल के व्यवहार में जो जीव की जलीय जीव की हिंसा होगी, भले ही आज आप वो आरओ मशीन होती है उसमें फिल्टर करके पी रहे हो, मिनरल वाटर पी रहे हो, लेकिन उस पानी के भीतर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको अलग करते ही, पानी की मछली को पानी से अलग करते ही उसको मरना पड़ेगा। तो जो जलीय जीव है, उस जलीय जीव को आप पानी से अलग करोगे तो भी उसको मरना पड़ेगा। और जल उसको बिना छाने हुए भी यदि हम उसको मिनरल किए बिना भी यदि हम लोग उसको ग्रहण करते हैं तो जठराग्नि में जाकर के उसको नष्ट तो होना ही पड़ेगा। हिंसा से कैसे बच पाओगे? संभव ही नहीं है। और घर की सफाई तो इंसान को करनी ही पड़ती है। एक कुत्ता होता है, वो भी जहां बैठता है पैरों से मिट्टी को ऐसे ऐसे करके सफाई करके बैठता है। तो हम तो इंसान है भाई, हमें तो घर की सफाई चाहिए। तब ऐसी स्थिति में चाहे घर की सफाई का काम हो, चाहे जल संबंधी कार्य हो, चाहे भोजन पकाने संबंधी कार्य हो, उसको पकाने के काबिल बनाने की का कार्य हो, या उस अन्न को तैयार करने का कार्य हो, या पांच प्रकार के पाप प्रतिदिन गृहस्थ के घर में होते ही हैं, उन पांचों प्रकार के पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। उसके लिए शास्त्रकारों ने हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पांच प्रकार के महायज्ञ गृहस्थ के घर में नियमित रूप से होना चाहिए। जब पाप नियमित रूप से हो रहे हैं, नित्य हो रहे हैं, तब उनका प्रायश्चित भी नित्य होना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम देवी होमो बलिवेश्वो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। पांच प्रकार के यज्ञ नियमित रूप से करते रहेंगे तो प्रायश्चित होता रहेगा, पाप का शोधन होता रहेगा। जिस प्रकार से घर में झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने पर जो भूमि में जमीन में जीवाणु होते हैं, इतना ही नहीं बाबा, आज तो गुड नाइट जला करके मच्छरों को भी मारना ही पड़ता है, और नहीं मारेंगे तो पता नहीं डेंगू हो जाएगा, कितना बड़ा बाधक बन जाएगा, करना ही पड़ता, उसका कोई उपाय नहीं है। तो मार्जनी में जो दोष लग रहा है, उस दोष से निवृत्त होने के लिए एक यज्ञ बता दिया शास्त्र ने, अध्ययन अध्यापन। मार्जनी में जो जीव हिंसा होती है उसका प्रायश्चित बताया कि प्रतिदिन नियम से अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। अध्ययन से जैसे वो मार्जनी झाड़ू जो होती है वो बाहर में घर की सफाई करती है ना, ठीक इसी प्रकार से जो अध्ययन और अध्यापन है वो स्व और पर दोनों का भीतर का मार्जन करते हैं, इसलिए उसका प्रायश्चित हो जाता है, चित्त की शुद्धि का काम करेगा। अध्ययन उपनिषद का, गीता का, स्मृति ग्रंथों का, पुराणों का जो अध्ययन होता है, वो अध्ययन चूंकि हमारे मन का मार्जन करता है, बाहर की झाड़ू घर का मार्जन करेगी, और ये जो अध्ययन है वो हमारे स्वयं का मार्जन करेगा, मन का मार्जन करेगा। इसके साथ ही जो अध्यापन होता है वो सामने वाले के चित्त का मार्जन करेगा, तो अपने भी शुद्धि और सामने वाले की भी शुद्धि। इस प्रकार जैसे वो झाड़ू घर का मार्जन करता है, इस प्रकार से भीतर में हमारा मन का मार्जन प्रतिदिन होना चाहिए, चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, ताकि हम उस स्थिति पर पहुंच सके, वो पाप होते हुए भी पाप हमारा स्पर्श न कर सके। जीवन है तब तक वो व्यवहारिक पाप दिखाई तो पड़ेगा, होता तो रहेगा, मगर मन का जो मार्जन हो जाता है, मन का मार्जन होने पर तत्व ज्ञान की उपलब्धि होगी, और तत्व ज्ञान की उपलब्धि होने पर शरीर के द्वारा स्वाभाविक रूप से जो होते हुए कर्म है और उनसे जो पाप हो रहा है वो पाप आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अरे घर के मक्खी मच्छर की बात छोड़ो, कहते जिसके भीतर से अहंकृत भाव निकल गया है, मैं करता हूं ये भाव समाप्त हो गया है, अकर्तापन की भाव की स्थिति आ गई है। हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, न तो वो किसको मारता है और न मारण क्रिया का है, परिणाम से पाप से उसका बंधन होता है। माने अकर्तापन की स्थिति ये चित्त की शुद्धि के बिना संभव नहीं है। चित्त शुद्ध होने पर ही अकर्तापन की स्थिति आएगी, इसलिए जो बाह्य पाप हो रहा है उसका प्रायश्चित है कि हम उस स्थिति पर पहुंच जाएं कि वो पाप हमें स्पर्श भी न कर पाए, हम करने वाले ही न रहे, होता रहे। अब होने में कल सुन रहे थे, करवट बदलते हुए मच्छर भी मर गया तो मर गया, हमने कौन सा मार दिया। इसलिए अध्यापन उसके लिए बहुत जरूरी है, अध्ययन भी और अध्यापन भी। विद्या जो प्राप्त है शास्त्र की, अध्ययन अध्यापन का अर्थ होता है, पहले जो शास्त्र में लिखा गया है शास्त्र विद्या है, उसको इस दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए, ये मेरे लिए है, ये अपने कल्याण के लिए है। और जिस दवा को जिस औषधि को खाकर के स्वयं स्वस्थ होता है, वो व्यक्ति सोचता सामने वाला भी कोई उसी का मरीज है, कहेगा भैया ये दवाई बहुत अच्छी है, मैंने सेवन किया मेरा बुखार गया, तुम भी सेवन करो तुम्हारा भी जाएगा, पपीता के पत्ते का रस मैंने पिया डेंगू चला गया, तुमको आ गया तो तुम भी पियो ठीक हो जाओगे, यही तो होता है। इसलिए शास्त्र विद्या को मैंने अपने जीवन में धारण किया है और तुम भी इसको धारण करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस प्रकार से अध्ययन और अध्यापन के द्वारा जो मार्जनी के द्वारा होने वाला पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। आचार्य शंकर इसलिए कहते हैं ये नित्य कर्म है अग्निहोत्र आदिनी कर्माणी, और दूसरा जो जल संबंधी दोष लगता है, पानी में जो दोष होता है, प्राणी हिंसा आदि होती है, उसके लिए शोधन का उपाय बताया शास्त्र में, तर्पण, जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, देव तर्पण होता है, पितृ तर्पण होता है, इस तर्पण क्रिया के द्वारा जल संबंधी जितना भी दोष है उसकी शुद्धि होगी। देखो जल का और हमारे अंतःकरण में जो श्रद्धा भाव है उसका बहुत बड़ा संबंध है। आप छांदों के उपनिषद पढ़े हैं, एक बहुत वर्षों पहले मुझे ध्यान है मैंने पंचाग्नि विद्या यहां पर सुनाई थी, पंचाग्नि विद्या में एक प्रसंग बहुत सुंदर आया है, वहां जल को पुरुषवाची बताया है और श्रद्धा से लेकर के वहां पर प्रारंभ हुआ है, तो व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है वो जलवाचक होती है। अब जब ये शास्त्रीय पद्धति से हम कर्म कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, बहुत सारे तार्किक लोग ये तर्क करते हैं कि कहां तो सूर्य है और कहां तुम बैठे हुए हो, हजारों लाखों योजन दूरी पर और उसे सूर्य को जल चढ़ा रहे हो। तर्क देने वाले व्यक्ति कहते हैं कि गुरु नानक देव हरिद्वार में गए, हर की पेड़ी में स्नान किया और फिर वहां से वो गंगा के में खड़े होकर के पानी को ऐसे हाथ से उलीचने लगे, बाहर फेंकने लगे। तो अनुयायियों ने पूछा कि गुरुजी जल को बाहर क्यों फेंक रहे हो, वो कहने लगे कि मैं पंजाब में मेरा खेत सूख रहा है, बारिश नहीं हुई है इसलिए खेत में पानी सींच रहा हूं। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कहां पंजाब और कहां हरिद्वार, ये पानी उस खेत में कैसे पहुंचेगा। तो गुरुजी ने कहा भले लोगों, जब तुम यहां से सूर्य को जल पहुंचा रहे हो तो मेरा जल पंजाब भी नहीं पहुंचेगा क्या। लोगों ने ऐसे तर्क उठा दिए हैं, अरे भाई उस स्थूल जल का संबंध नहीं है, उस जल के पीछे भावना का संबंध है, वो जल श्रद्धा का रूप होता है, वो स्थूल जल नहीं जाएगा लेकिन उससे संबंधित जो व्यक्ति की श्रद्धा होती है उस देव को प्राप्त होती है। इसलिए तर्पण एक ऐसा है जल से संबंध रखने वाली वस्तु है और जल में श्रद्धा की प्रधानता होती है। प्रतिदिन आप अपने घर में पूजा करते हैं तो जल अवश्य पास में रखेंगे, जल है अग्नि है दीपक आदि है, उसके बिना पूजा ही संपन्न नहीं हो सकती है, वो श्रद्धा का प्रतीक है, जल महत्व है उसका। इसलिए तर्पण में जो उसकी श्रद्धा होती है वो श्रद्धा ही उसके जो जल संबंधी पाप होते हैं उस पाप को समाप्त कर देती है, उसका प्रायश्चित करवा देती है। तब कहा कि देखो दूसरा जो पानी संबंधी दोष लगता है तर्पण के द्वारा उसकी शुद्धि कर लो, उसका प्रायश्चित कर लो। ये नियत कर्म है, नित्य कर्म है, उसको करना ही चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाइयो यह कर्मण। कर्म नहीं करने की अपेक्षा कहते कर्म करना ठीक है, पर कौन से कर्म करना चाहिए? नियतम कुरु कर्म, नियतम कर्म कुरु, जो शास्त्र विहित है, प्रतिपादित है, नियत किए गए हैं कि ऐसा करो, ये तुम्हारे चित्त की शुद्धि का साधन है और परंपरा से तुम्हारे मोक्ष में साधन बनेंगे, इसलिए इन कर्मों को करो। नहीं करने की बजाय वो कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान तो कहते हैं नहीं करोगे निकम्मे हो जाओगे, तो इस शरीर से भी दूसरे के ऊपर बोझ बन जाओगे, तुम्हारा निर्वाह भी नहीं चल पाएगा, इसलिए करो। निर्वाह के लिए करना है लेकिन वासना से नहीं, शास्त्र के आदेश से उस कर्म को करना है। एक प्रायश्चित करके बताया है, चूल्हे में जहां आग जलती है एक उपलक्षण है चूल्हा। चूल्हे में जो होता है चाहे वो लकड़ी से जला रहे हो, चाहे गैस के द्वारा जला रहे हो, और चाहे घर में लाइट जला रहे हो, जहां प्रकाश होता है अग्नि को देख करके सूक्ष्म छोटे छोटे जीव पतंगे जैसे उसका प्रतीक होता है, वो उस जीव की हिंसा तो अवश्य होनी ही होनी है। तो इस प्रकार से अग्नि संबंधित जितने भी हिंसा होती है उसके निवारण के लिए अग्नि में ही प्रायश्चित बताया गया है। अग्नि से संबंधित पाप है तब उसका प्रायश्चित भी अग्नि से होना चाहिए। कहा वो हवनात्मक जो यज्ञ है, अहर है अग्निहोत्रम जुयात, आचार्य शंकर लिखते हैं अग्निहोत्रादीनि कर्माणि, ये कर्म करना चाहिए, अग्निहोत्र होना चाहिए, अग्नि में आहुति लगनी चाहिए। कारण कि अग्नि संबंधी से जो पाप हो रहा है उसका प्रायश्चित अग्नि के द्वारा ही होगा। यही कारण है कि एक आस्तिक परिवार में देखो पूजा में भी बैठोगे तो दीपक अवश्य जलाओगे। प्राचीन पद्धति तो यह थी कि प्रतिदिन घर में हवन हुआ करता था, अब धीरे धीरे हवन की विधा तो लुप्त से ही हो गई है। कोई लाखों में मिलेगा जहां हवन होता हो नियमित रूप से, जब अवसर आता है प्रसंग विशेष होता है तब आस्तिक परिवार कर लेते हैं, पर यहां तो कहते हैं कि जब अग्नि संबंधी पाप प्रतिदिन हो रहा है उस स्थिति में उसका प्रायश्चित भी प्रतिदिन हो। तब यह है कि चलो अग्नि से प्रायश्चित करना है, वहां भावना की प्रधानता होती है। यदि हवनात्मक यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक सुलभता के लिए इतना निवेदन करता हूं उसका थोड़ा भी अंश अपने जीवन में नियमित आना चाहिए। कम से कम अपने घर में गौ घृत का दीपक तो जलना ही चाहिए। गौ घृत का दीपक, घी भी कैसा होना चाहिए? गौ घृत हो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि गौ के घृत में विशेषता है। गौ के शरीर में संपूर्ण देवताओं का निवास माना जाता है और गौ के घृत में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। जितने भी देवता होते हैं वो अग्निमुख से ही अपना भोजन स्वीकार करते हैं, यद्यपि सबके सब अग्निमुख से ही करते हैं। वो हमारी जो जिह्वा है, जीव है, उसका देवता कौन है? अग्नि देवता है। तो अग्नि की तो प्रधानता ही होती है। जितने देवता होते हैं वो तेजस तत्व प्रधान होते हैं और अग्नि के द्वारा ही अपना भोजन करते हैं। गौ के जो घृत होता है उस घृत में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। आग जब जलती है आप उसकी लो देखिए, आग की जो लो उठती है, अर्ची जिसको बोलते हैं संस्कृत में, वो अर्चियां जो लो उठती है उसका रंग कलर कैसा होगा? स्वर्ण कलर जैसा होगा, पीलेपन में होगा। और आप गाय के घी को देखिएगा, उसमें तेजस तत्व की प्रधानता होती है। इसलिए जिससे देवता आसानी से वो भोजन स्वीकार कर सके, पाप की निवृत्ति के लिए अग्नि संबंधी जो पाप हो रहा था उसका निवारण पाने के लिए गौ घृत का दीपक भी नियमित रूप से घर में जलता है तो एक प्रायश्चित माना जाएगा। इस प्रकार से अग्नि संबंधी पाप का प्रायश्चित बता दिया गया है। और दूसरा जो चौथे प्रकार का पाप होता पेषणई, अन्न को पेषण करने पर, पेस्ट करने पर, चाहे आप मिक्सी में लेकर के उसको लिक्विड बनाया, पेस्ट किया है, बना दिया उसका, अथवा आटा बना दिया है, आपने बेसन बनाया है, अन्न को जो पीसना होता है उसमें कितनी ही सावधानी बरतो बाबा, हमें कितने ही जैन बन जाएं पर रह नहीं पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई दाने ऐसे होते हैं जो दाने के भीतर में एक कीड़ा पैदा होता है, उसको गुण बोलते हैं, गुण वो दाने के भीतर ही होता है, पता भी नहीं चल पाता है कि इस दाने के भीतर में गुण है, बहुत ज्यादा होने पर बाहर प्रकट भी हो जाते हैं, अंदर के अंदर रह गए। अब जो उसकी पैषण क्रिया होती है तो उस जीव की तो हिंसा होनी ही होनी है, कैसे बच पाएंगे हम लोग उससे। तो पैषण क्रिया से बचने के लिए बहुत सुंदर बताया है कि देखो जो अन्न था उसमें कितने जीवों का अपना अधिकार था, तब उस अन्न को गौग्रास आदि देकर के फिर सेवन करना चाहिए। वैश्वदेव जो यज्ञ होता है, बलि यज्ञ जिसको बोलते हैं, बलि का अर्थ यह नहीं कि गर्दन काट करके बलि चढ़ाया जाए, दुर्गा को बलि चढ़ाते, वो बलि का विधान नहीं है। बलि माने विश्व यज्ञ जो होता है वो यज्ञ होना चाहिए। भोजन बनता है, प्राचीन शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि बाबा घर में जब भोजन बनाया और पहले पहले जो रोटी बनती है उस रोटी पर गौ माता का अधिकार होता है, गौग्रास माना जाता है। घर में बनने वाला जो भोजन है अंतिम रोटी होती है उस पर कुत्ते का अधिकार होता है। जो अन्न होता है इतने पक्षी देख रहे हैं सबसे छीन करके हमारे पास आया है, तब उसको कबूतर को दाना डाल दिया, कव्वे को दाना डाल दिया, कुत्ते को रोटी डाला, गौ को ग्रास दिया है। इस प्रकार जो ये अन्न का विभाजन करना है अन्य प्राणियों के द्वारा, विश्व रूप से जो हमारे सामने देव उपस्थित हो रहे हैं उनके सामने उस अन्न को विभाजित करके और प्रसाद रूप जो बचता है उसको अगर सेवन करते हैं तो हमारा चित्त निर्मल होगा, पाप का शोधन होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, ये नियमित यज्ञ हो रहे हैं हमारे, इस नियमित यज्ञ को करने के अनंतर जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारा यज्ञ शेष हो जाता है और यज्ञ शेष को ग्रहण करने से पाप का शोधन होता है, वो प्रसाद है। इसलिए चित्त की प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है, प्रसादे सर्व दुखानाम अनिरस्योपजायते, अरे जब चित्त प्रसन्न हो जाता है तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए बताया गया है कि जो वैश्वदेव यज्ञ होता है, बलि यज्ञ होता है, अतिथि के घर में होता रहेगा तो उसका ये होगा कि जो पैषणे में दोष लगता है उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। और एक दोष होता है कुंडनी, अन्न को कूटने में जो दोष हो रहा है उसके लिए बहुत सुंदर बताया कि अन्न को बनाने से पहले उसको कूटा जाता है, छिलका आदि उतारा जाता है, उसकी सफाई की जाती है। उसका सुंदर उपाय बताया अतिथि पूजनम, उसका प्रायश्चित है अतिथि की सेवा करना। हमारे सनातन शास्त्रों में अतिथि सत्कार का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, बहुत सुंदर महत्व बताया। मुझे एक छोटी सी कथा ध्यान में आ गई, जब महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उस राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी गई बाबा माला माल हो गए, उसे मिली हुई दक्षिणा और साधनों को लेकर के ब्राह्मणों को अपने अपने घर जाना मुश्किल हो गया, इतना माल मिला। कहीं जंगल के रास्ते से ब्राह्मण लोग जा रहे थे और बहुत दक्षिणा के साधनों का भार था, पेड़ की छाया में बैठ गए, थोड़ा विश्राम कर रहे थे, बहुत बोझ होता है ना तो फिर बीच में विश्राम लेना पड़ता है। ब्राह्मण लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सामान रखा हुआ, और एक दूसरे के मुंह से बराबर महाराज युधिष्ठिर के प्रति प्रशंसा के शब्द निकल रहे थे, वाह महाराज ये यज्ञ पहले ही कर दिया होता तो इन ब्राह्मणों को गांव गांव न भटकना पड़ता, मालामाल हो गए, सब कुछ हुआ, बहुत बड़ी प्रशंसा चल रही थी। उसी वक्त एक वनीय प्राणी वहां पर आया, नेवला होता ना, मंगुस, गुजराती में मंगुस बोलते होंगे, समझ गए आप, सब भाषाओं में समझ गए हैं, मैं जिसको समझाना चाहता हूं, वो नेवला आया, उन ब्राह्मणों की बात सुनकर के नेवला कहने लगा किसकी प्रशंसा कर रहे हो। ब्राह्मण बोले महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे हैं, शायद इस धरती पर ऐसा उदारता पूर्वक यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया हो, क्या दान दक्षिणा मिली है, सारे ब्राह्मणों का खुल करके उनको आशीर्वचन मिला है। वो नेवला कहने लगा ऐसा बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया, अरे इससे बड़ा यज्ञ करने वाला व्यक्ति मैंने देखा है। सारे ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए, इस नेवले ने कौन सा यज्ञ देखा, पूछने लगे कि इससे बड़ा यज्ञ कहां हुआ था। नेवला ने एक अपने जीवन का जो दृश्य था उसकी बात सुनाई कि मैं जिस जंगल में रहता हूं एक ब्राह्मण रहता है, छोटा सा परिवार है, ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है, एक पुत्र है और पुत्र वधु है, इतना संतुष्ट परिवार था, इतना संतुष्ट रहने वाला, शिलोच्छवर्ती से अपने जीविका चलाने वाला था। शिलोच्छवर्ती उसको बोलते हैं जब किसान लोग अपने खेत से फसल काट लेते हैं और फसल काटने के बाद काटते वक्त कई सारे फल टूट करके खेत में गिर जाते हैं, गेहूं काटा उसकी बाली नीचे गिर गई, कुछ दाने गिर जाते हैं। अब किसान का इतना बड़ा लंबा चौड़ा खेत होता है, वो किस किस दाने को चुनने में लगा रहेगा, खास खास फसल को उठा करके ले जाता है, जो दाने खेत में गिरे हुए होते हैं उस दानों को बोलते शिलोच, और उसको इकट्ठा करके जो अपने जीवन या चला रहा निर्वाह कर रहा हो उसको बोलते शिलोच्छवर्ती। ऐसा ब्राह्मण था जो खेत से दाना दाना चुन करके इकट्ठा करके और उससे अपना जीवन निर्वाह करने वाला था, इतना संतुष्टि परिवार था। वो नेवला कहने लगा एक बार ब्राह्मणों को कई दिनों तक तो खेतों में कुछ मिला ही नहीं, एक बार किसी किसान के खेत में गया, वो जौ की फसल काट करके किसान तो ले गया और वहां से कुछ जौ के दाने उसको मिले इकट्ठे करके, वो भी मुश्किल से, कोई पुराने जमाने में शेर चला करते थे, अभी तो किलो हो गया, शेर भर दाने मिले होंगे, और वो दाना ब्राह्मण दे करके आया, उस अन्न को कूटा, छिलके उतारे और कूट करके उसको फिर अग्नि में सिकाई करके उसको पीसा गया, पेस्ट किया गया और उसका वो सत्तू बना दिया जो पीने के लिए होता है, बड़ा ठंडा होता है जो का। अब जो भोजन तैयार हुआ है उसका, उस ब्राह्मण ने शेर भर जो अन्न आया था उसका सत्तू तैयार किया गया, खाने से पहले उसके पांच विभाग किए। परिवार में मेंबर चार हैं, पांच विभाग किए और ब्राह्मण अपने कुटीर से बाहर निकला, देखें अगर कोई अतिथि भगवान आ रहे हो तो पहले अतिथि का सत्कार कर दूं, उनकी सेवा कर दूं, उसके बाद में बचा हुआ प्रसाद सेवन करेंगे। बाहर निकल के देखा एक कोई वृद्ध ब्राह्मण आते हुए दिखाई पड़े, उनके इंतजार की गई, पास में आए, यथोचित उनका सम्मान किया, स्वागत किया। देखो किसी के घर में अतिथि आता है, कोई साधन हो ना हो, कम से कम शास्त्र कहते हैं कि चार चीज उसके घर में जरूर मिलेंगे, आसनम, भूमि रुदकम और तृण, चार चीज जरूर मिलेगी। अरे बैठने के लिए आसन मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जल तो मिलेगा ही मिलेगा, आसन दिया और सुनृताम जो होता है मीठी वाणी, आइए आइए बैठिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी किस बात की, बैठने को जगह दिया, प्रेम से बोला, पीने को पानी दिया, एक आसन दे दिया, इतने में भी अतिथि का सत्कार होता है। ब्राह्मण का सत्कार किया गया, बिठाया गया और पूछा गया, अतिथि देव प्रसाद पाएंगे? बोले हां, आज सवेरे से कुछ नहीं लिया है, कुछ खाने की इच्छा तो है। घड़ी तो इनकार कर रही है, भाई दो मिनट में पूरा करता हूं, खाने की इच्छा तो है। तब भोजन कराने के लिए बिठाया, पांचवां हिस्सा अतिथि के निमित्त का ही था, उनको परोस दिया गया। पर ब्राह्मण इतना भूखा था महाराज, जैसे कोई पंजीरी का प्रसाद दे दें और एक बार फाकी मार जाए, वो तो साफ हो गया। फिर इच्छा थी कि और खाएंगे, वो ब्राह्मण ने अपना हिस्सा भी अतिथि को परोस दिया। फिर भी उनको देखा कि और खाने की इच्छा है, पूछा और लेंगे? हां हो तो ले लेंगे। पत्नी ने कहा मेरा हिस्सा भी परोस दीजिए। फिर भी अतिथि देखता है कि अभी तृप्त नहीं हुआ है, पंडित जी और लेंगे? हां थोड़ा ले लेंगे। बेटे ने इशारा किया, पिताजी मेरा हिस्सा परोस दीजिए। अब तो पांचवां हिस्सा मात्र रह गया। देखा कहा पंडित जी और चलेगा? पंडित जी ने कहा हां थोड़ा चल सकता है। पुत्र वधु बोली मेरा भी परोस दीजिए। पांचों हिस्सों को अतिथि चट कर गया। उसके बाद वो अतिथि कहने लगा बस पंडित जी अब मत पूछना, हम नहीं खा पाऊंगा, तृप्त हो गया, बहुत अच्छा प्रसाद बना। उठा वो ब्राह्मण और जहां बाहर निकल करके हाथ धोए, मुंह से कुल्ला किया और वो आशीर्वाद लेकर के ब्राह्मण तो चला गया। वो नेवला कहता था मुझे प्यास लगी और मैं वहां पर गया पानी पीने के लिए, तो जहां पानी गिराया था हाथ धोने से कुल्ला करने से पानी गिरा, मैं वहीं पानी पीने के लिए गया। गर्मी बहुत थी, जमीन पानी को तो सोख गई थी, केवल मिट्टी गीली रह गई थी, पानी पीने को तो नहीं मिला, पर मैं तड़प रहा था गर्मी के मारे, भीतर की गर्मी बाहर की गर्मी, तो ठंडी ठंडी जो वो मिट्टी थी मैं उस मिट्टी में ही लोटपोट होने लगा, मैं उसमें चिपक करके बैठ गया। तो एक आश्चर्य हुआ कि जितनी गीली मिट्टी मेरे शरीर पर चिप लगी उतना उतना मेरा शरीर सोने का बन गया। नेवला बोला उतना मेरा शरीर सोने का बन गया। और जब मैंने आप जैसे विद्वानों के द्वारा सुना कि महाराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, मेरे मन में थी कि पूरा का पूरा शरीर ही स्वर्ण बन जाए तो कितना अच्छा होता। तो इस कामना को लेकर के पंडित जी आप लोग जहां पानी गिरा गिरा करके कीचड़ पैदा करके आए हो, मैं वहां किलोले करके आया हूं, लोटपोट होकर के आया हूं, मैं सोने का तो नहीं बना, जो सोना था वो भी कीचड़ में दब गया। अब आप देख लीजिए कि बड़ा यज्ञ किसका है। अतिथि सत्कार का इतना बड़ा महत्व माना गया, जिसके द्वारा जो पेशण संबंधी पाप होता है उसका प्रायश्चित होता है। इसलिए भगवती श्रुति में बहुत सुंदर कहा गया है कि कुर्वन्यवे है कर्माणि जिजि विशेत शतम समाहा, कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इसलिए कर्मों को करते हुए कि कर्म करने से ही चित्त का मार्जन होगा, चित्त की शुद्धि होगी और चित्त शुद्धि होने पर ही प्रथम मंत्र की योग्यता अधिकारिता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ यह पूर्ण करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।